उजागर। एसआईसी द्वारा उजागर अवैध स्टॉक योजना के चौंकाने वाले रहस्य। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसआईसी ने हाल ही में केविन सी डिल्स और उनके नियंत्रण वाली दो संस्थाओं के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई पूरी की, जो एक अवैध स्टॉक बिक्री योजना पर केंद्रित थी। यहाँ मुख्य बिंदु है प्रतिवादी और आरोप। केविन सी डिल्स और जोसेफ पाडिला पर जून 2023 में एसआईसी द्वारा अवैध रूप से स्टॉक बेचने की योजना में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर पाडिला ने इस योजना को अंजाम दिया, जिससे खुद को और अवैध स्टॉक बिक्री करने के इच्छुक अन्य भुगतान करने वाले ग्राहकों को फायदा हुआ। कथित तौर पर डिल्स ने कानूनी आवश्यकताओं से बचते हुए गुप्त रूप से डिल्स के स्वामित्व वाली कंपनी ऑनकोलॉजी फार्मा इंक के स्टॉक बेचने के लिए पाडिला के साथ सहयोग किया। योजना यांत्रिकी। इस योजना में पाडिला द्वारा व्यवस्थित अपतटीय खातों के माध्यम से स्टॉक बेचने वाले व्यक्तियों की पहचान छिपाना शामिल था। कथित तौर पर डिल्स ने पाडिला से जुड़े व्यक्तियों को स्टॉक हस्तांतरित किया और अवैध बिक्री से आय प्राप्त की। इसके अतिरिक्त डिल्स ने कथित तौर पर कंपनी के स्टॉक में निवेशकों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए ऑनकोलॉजी फार्मा पर अपने प्रभाव का फायदा उठाया। अंतिम निर्णय। डिल्स ने एक अंतिम निर्णय पर सहमति व्यक्त की, जो उसे प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने से स्थायी रूप से रोकता है। इस निर्णय में एक पैनी स्टॉक बार अतिरिक्त निषेधाज्ञा उपाय 223-229 का जुर्माना और 6-225-448 का पुनर्भुगतान और पूर्व निर्णय ब्याज शामिल है। इसी तरह ब्राइट स्टार इंटरनेशनल और लाइफ साइंसेज जर्नीज दोनों डिल्स के नियंत्रण में थे, को छूट और पूर्वाग्रह ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। डिसगर्जमेंट ऑफसेट। निर्णय डिसगर्जमेंट को उस राशि से ऑफसेट करने की अनुमति देता है, जिसे डिल्स एक संबंधित आपराधिक मामले को निपटाने के लिए एक याचिका सौदे में भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। हालांकि यदि आपराधिक कार्रवाई की निगरानी करने वाली अदालत याचिका समझौते को खारिज कर देती है, तो डिल्स को एसआईसी को पूरी वसूली राशि का भुगतान करना होगा। मामले को संभालना। एसआईसी के बोस्टन क्षेत्रीय कार्यालय ने मामले को प्रबंधित किया, जिसमें वकील रयान मर्फी, माइकल मोरन, कैथलीन शील्स और एमी ग्वियाज़्ज़ा ने इस प्रयास का नेतृत्व किया। संक्षेप में अंतिम निर्णय डिल्स और धोखाधड़ी योजना में शामिल संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण कानूनी परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मौद्रिक दंड और भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं। निगरानी और जवाबदेही पर हाउस कमेटी ने इन्फ्लुएंस पेडलिंग, जो बिडेन के सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग की जांच शीर्षक से एक सुनवाई आयोजित की। बिडेन के सहयोगियों टोनी बोबुलिंस्की और जेसन गैलानिस सहित गवाहों ने गवाही दी कि राष्ट्रपति जो बिडेन संदिग्ध व्यापारिक सौदों में शामिल थे। यहाँ मुख्य बिंदु हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिडेन ने व्यक्तिगत लाभ के लिए चीन और रूस के साथ सौदे करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि बिडेन्स ने कई फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल के जरिए विदेशी स्रोतों से $24 मिलियन से अधिक की कमाई की। आमंत्रित किए जाने के बावजूद हंटर बिडेन, एक केंद्रीय व्यक्ति, सुनवाई में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का वर्णन किया जहां बिडेन ने विदेशी निवेशकों को प्रभावित करने के लिए उनके साथ बैठके और कॉल की व्यवस्था की। बैंक रिकॉर्ड से इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन प्रवाहित होने का पता चला, जिससे बिडेन्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। गवाहों ने पुष्टि की कि ईमेल में बड़े आदमी का संदर्भ राष्ट्रपति बिडेन को दिया गया है। संक्षेप में सुनवाई बिडेन परिवार द्वारा वित्तीय लाभ के लिए बिडेन के पद का उपयोग करने के आरोपों पर केंद्रित थी, और कुछ समिति सदस्यों ने राष्ट्रपति बिडेन से और स्पष्टीकरण मांगा।